हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप जुड़ चुके हैं तो बोलो द लास्ट स्ट्रीट के साथ, और मैं हूं जतिन अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसका हम क्वार्टरली एनालिसिस ही देखेंगे, क्वार्टर का देखेंगे कि क्या रहा। तो बहुत सारे रिटेल निवेशकों के पास ये शेयर है और सब लोग बेचारे बहुत ही दुखी रहते हैं, क्योंकि कब से प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। जब से मर्जर हुआ, इवन कैपिटल फर्स्ट के शेयर होल्डर्स दुखी हो गए हैं कि भाई हमारी कंपनी की जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे थी, आप यहाँ पे ले आए हो। तो मतलब बहुत ही दिक्कत हो गई है। और हम देख लेते हैं कि इसका इस बार के नंबर्स कैसे रहे और क्यों इस बार भी इसने क्वार्टरली लॉस डिक्लेयर किया है। तो बेसिकली जो उसमें इम्पैक्ट आ रहा है वो प्रोविजनिंग का है। तो प्रोविजनिंग की वजह से अगेन प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र कर रही है, और इनको हर क्वार्टर किसी ना किसी कंपनी के लिए प्रोविजन लेना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। देखा जाए तो मैनेजमेंट बहुत ही ढंग से काम कर रही है, इसलिए आप प्रोविजनिंग लेते जा रहे हो। बट आपने इतने सारे ऐसे ऐसे लोन्स दे रखे हैं कि जहाँ पे आपको प्रोविजनिंग लेनी पड़ रही है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वार्टर का समझ लेते हैं। इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने 50% एक्सपोजर जो प्रोविजनिंग करी है अपनी, वो उस एक्सपोजर पे करी है जो वोडाफोन आइडिया ग्रुप पे है। और वो क्यों किया है, मिस्टर वैद्यनाथन ने क्लियरली बोला है कि जब ग्रुप खुद कह रहा है कि अगर AGR ड्यूज वगैरह हमें देने पड़ गए सब, तो फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि एज अ प्रूडेंस मैनेजमेंट हम कैसे ये कॉल लें कि हम बिल्कुल भी उसके अंदर प्रोविजनिंग ना करें। उन्होंने ये भी ज़रूर कहा है कि वैसे वोडाफोन और आइडिया मतलब बिरला ग्रुप कंपनी है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बट लेट से अगर कुछ भी होता है, तो इन्होंने कहा हम अपनी तरफ से सेफ गार्ड करके चल रहे हैं, इसलिए हमने प्रोविजनिंग इसके अंदर करी है। तो गाइस, अब मैंने थोड़ा सा डेटा लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नंबर्स में है, तो वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो है क्या, इन्होंने कहा कि हमने 3 buckets में डिवाइड किया हुआ है, और आप भी उसको उसी तरीके से समझे तो बेटर रहेगा। पहला है DHFL और रिलायंस कैपिटल का, और उसके अंदर ये कहते हैं कि इन्होंने 75% प्रोविजनिंग कर दी है। इनका एक्सपोजर अराउंड 1500 करोड़ का है उसके अंदर। सेकंड बकेट आपकी हो गई, एक साइकिल करके एक कंपनी थी जो उसके अंदर इन्होंने कहा कि 100 करोड़ का एक्सपोजर है हमारा, 50% प्रोविजनिंग कर दी है। एक इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी है जो टोल प्लाजा मैनेज करती है, पेमेंट्स कलेक्ट करती है, तो उसका 963 करोड़ का एक्सपोजर है इनका, और उसमें इन्होंने 15% प्रोविजनिंग कर रखी है। तो और ये अकाउंट जो है इनका, ये SMA2 के अंदर है। तो SMA2 के अंदर बेसिकली क्या है कि इसके अंदर पेमेंट इनको आ रही है, बट डिलेड पेमेंट आ रही है, और वो कह रहे हैं कि हर महीने डिलेड पेमेंट आ रही है, इसलिए हमने 15% ही प्रोविजन दिया है। उसके बाद जो इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने टोटल 1191 करोड़ का जो इनकी बुक्स है सारी, तो उसके अंदर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ इश्यूज हो। तो ये वो 1191 करोड़ की वो बुक है जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं, पेमेंट डिले हो रही है, कोई डिफॉल्ट करेगा, कुछ भी है। तो उसका इन्होंने कहा है, इन्होंने टोटल 53% प्रोविजनिंग में डाल दिया है। और टोटल स्ट्रेस बुक इन्होंने बताई है 3487 करोड़ की, और उसके ऊपर इन्होंने 51% प्रोविजनिंग कर रखी है। तो गाइज, मिस्टर वैद्यनाथन की बात सुनकर तो यही लगता है कि इन्होंने प्रोविजनिंग काफ़ी कर रखी है, 51% प्रोविजनिंग दे रखी है इन्होंने अपनी जो भी स्ट्रेस बुक है उसको। इनके हिसाब से आगे कोई ऐसी प्रोविजनिंग नहीं आनी चाहिए। बट जब से स्लो डाउन आया है, तो आप देख रहे हो कि जो भी वीक बिजनेसेस हैं, वीक मैनेजमेंट है, उनके बिजनेसेस वाइंड अप हो रहे हैं, जो थोड़ी शेडी प्रैक्टिसेस में थे, तो उन सबको दिक्कत आ ही रही है। तो कुछ कहना मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली इस प्रोविजनिंग के दम पे ये लोग ढंग से चल पाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। हो सकता है इनको प्रोविजनिंग और भी करनी पड़े। बट मेरा ये मानना है कि क्योंकि इन्होंने इतना एक्टिवली प्रोविजनिंग करी है, और आप देखो 50% तो प्रोविजन दे ही चुके हैं, 51% इनफैक्ट, तो 51% जो इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी है, उसके बाद अगर लेट से डिफॉल्ट आता भी है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 10-20% इनको और डालना पड़ेगा उसके अंदर। बाकी तो ये PNL अकाउंट में दिखा ही चुके हैं। तो अब हमारा फ्यूचर देखने का यही हो जाता है इस बिजनेस में, कि क्या इसके अंदर और कितना स्ट्रेस आएगा, कुछ होएगा नहीं होएगा। तो उसके अंदर आपको अगेन मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा बिजनेस इन्होंने खड़ा किया था। ICICI बैंक में जब थे तो बहुत आगे लेकर गए थे बैंक को, उसके बाद कैपिटल फर्स्ट इन्होंने बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी, अभी IDFC फर्स्ट बैंक में है, तो कुछ टाइम तो लगता है। और IDFC बैंक अपने प्लस और माइनस के साथ आया था, माइनस आप देख रहे हैं प्ले आउट होता हुआ। तो इस समय हमें वही देखना है कि हमें मैनेजमेंट पे फोकस करना है, हमें उनकी बात समझनी है। इन्होंने काफ़ी क्लियरली कहा है कि इनको और प्रोविजनिंग की ज़रूरत शायद ना पड़े, बट वो शायद हमेशा रहता है वहाँ पे। तो गाइस, ये Q3 का इनका एनालिसिस था। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरे को पता है बहुत लोग बहुत ही दुखी हैं कि यार शेयर कहीं जाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको यही देखना है कि अगर आपको मैनेजमेंट पे भरोसा है, फिर तो आप इसके अंदर पैसे डालिए, वरना बहुत सारे बैंक्स हैं, आप किसी और में पैसे डालिए, इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। मुझे पर्टिकुलरली कोई ज़्यादा खराबी नहीं लगती, बट मैं कोई मतलब मैं खुद अपना पैसा नहीं डाल रहा हूँ IDFC बैंक में। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपको ठीक लगता है ये मैनेजमेंट और उनका जो जजमेंट है और हर चीज़। अगर वो सब आपको ठीक लगता है, तो फिर आप बिल्कुल पैसे डालिए, इसके अंदर पैसे बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। इस समय मार्केट में काफ़ी फाइनेंशियल कंपनीज़ की बुरी हालत हो रखी है, तो जो कंपनी सर्वाइव करेंगी और जो वेल रन होंगी वो मार्केट शेयर भी खाएंगी और वो आपका शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन भी दिखाएंगी। तो हम आपको यही देखना है कि क्या ये मैनेजमेंट इस सिचुएशन से निकल सकती है और किस हिसाब से निकल सकती है, कितना बेटर कर सकती है, क्या कर सकती है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पता चला होगा कि इस क्वार्टर में भी लॉस क्यों आया है, मतलब 2-3 क्वार्टर हो गए लॉसेस पे लॉसेस ही दिख रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा इस क्वार्टर के अंदर भी लॉस क्यों है। और अगर आपको मैनेजमेंट पे ट्रस्ट है, आपको कंपनी पसंद है, तो प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लीजिए, अपनी खुद की रिसर्च करिए और कंपनी में निवेश करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।